नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए भारत विश्व के लिए आशा की किरण बना हुआ है। बजट उपरांत वेबिनार में श्री मोदी का उद्योग जगत से गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक निर्माण, उत्पादन और निर्यात करने का आग्रह। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए दो और अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया। पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हुआ। इसराइल ने तेहरान और बेरूत के सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमले किए। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांड सेंटर को नष्ट कर ईरान की वायु रक्षा क्षमताओं, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एयर इंडिया की पहली उड़ान दुबई से नई दिल्ली पहुंची। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार पांचवें दिन झड़पें जारी। अफगान नेता का डोरंड रेखा पर पाकिस्तान की महत्वपूर्ण चौकियों पर कब्जा। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप आज शाम बर्मिंघम में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विश्व के लिए आशा की किरण बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीव्र आर्थिक विकास विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने का आधार बन गया है।
आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और एक्सपोर्ट मोर।
बजट उपरांत आयोजित वेबिनार आर्थिक विकास को सतत और सुदृढ़ बनाना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व विश्वसनीय और लचीले निर्माण साझेदारों की तलाश में है। उन्होंने कहा कि भारत के पास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है।
मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हमारे एमएसएमईज, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इतना ही नहीं हमारे छोटे बड़े शहर, ये अर्थव्यवस्था के पिलर्स के तौर पर दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन वे सभी इंटरकनेक्टेड है। जैसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नए अवसर तैयार करती है और इससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और देश के लिए अपार अवसरों के द्वार खुल गए हैं। प्रधानमंत्री ने उद्योगों से अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने तथा गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस मिशन का लक्ष्य देश को उन्नत बायोफार्मा अनुसंधान और विनिर्माण में अग्रणी बनाना है।
बजट में बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा भी की गई है। इस मिशन का उद्देश्य है भारत को बायोलॉजिक्स और नेक्स्ट जनरेशन थेरेपीज के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना। हम एडवांस बायोफार्मा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप की ओर बढ़ना चाहते हैं।
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए दो और अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना में कहा कि इन अधिकार प्राप्त समितियों की अध्यक्षता भारत सरकार के उप सचिव से कम रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिन्हें भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा। बड़ी संख्या में आवेदनों के निपटान में तेजी लाने के लिए दो अतिरिक्त समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही ऐसी दो समितियां मौजूद हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में सेवा संकल्प प्रस्ताव बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दैनिक कामकाज में प्रस्तावों और सिद्धांतों के प्रभावी कार्यान्वयन के तरीकों पर भी चर्चा की गई। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरान पर इसराइल के हमले का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने बताया है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो में डिजिटल छेड़छाड़ की गई है। इकाई ने यह भी कहा है कि रक्षा मंत्री ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है। सरकार ने नागरिकों से ऐसे वीडियो से सावधान रहने का आग्रह किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार इसराइल तेहरान और बेरूत में सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसराइल की सेना ने कहा है कि उसके सैनिक दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हैं और वे हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इसराइल ने आरोप लगाया है कि हिजबुल्ला ने ईरान की ओर हमले किए हैं। IDF ने इसराइली हमलों में बेरूत में फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हमजा रामी के मारे जाने की पुष्टि की है। एक अन्य हमले में इसराइल की सेना ने बेरूत में हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय के प्रमुख हुसैन मकलत को भी मार गिराया। इसके अलावा अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि अमरीकी सेना ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमान और नियंत्रण केंद्रों, ईरानी वायु रक्षा ढांचों, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों और सैन्य हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कमान ने कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। संघर्ष में अब तक 6 अमरीकी सैनिक भी मारे गए हैं। दूसरी ओर ईरान की सरकारी मीडिया ने बहरीन में एक अमरीकी हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ईरान ने सऊदी अरब के रियाद में अमरीकी दूतावास पर ड्रोन हमले किए। इस पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका जवाबी कार्रवाई करेगा।
Our objectives are clear. First,
हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं। हम ईरान के मिसाइल ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं और साथ ही उनकी नई मिसाइल विनिर्माण इकाइयों को भी खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा हम उनकी नौसेना को भी पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पहले ही 10 जहाजों को ध्वस्त कर चुके हैं और साथ ही हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके।
नौवहन महानिदेशालय ने बताया है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच विदेशी नौकाओं पर तैनात 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल हुआ है। महानिदेशालय और प्रशासन मिलकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नाविकों और उनके परिवारों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में 5 और 6 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने छात्रों और विद्यालयों को सूचित किया है कि बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूदा स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच एयर इंडिया की पहली उड़ान आज दुबई से नई दिल्ली पहुंची। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस उड़ान में 149 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। एयर इंडिया ने केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और दुबई के स्थानीय अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। हिमाचल सरकार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आश्वासन दिया कि पश्चिम एशिया में रह रहे हिमाचल के सभी नागरिक सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के साथ निरंतर संपर्क में है। जम्मू कश्मीर में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में लगातार दूसरे दिन भी जनजीवन प्रभावित रहा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कश्मीर क्षेत्र में सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज बंद रहे तथा परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आज कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी कच्चे तेल में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह $72.23 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड में लगभग 1.9% की वृद्धि हुई और यह शुरुआत में $79.2 पर कारोबार कर रहा था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा डूरंड लाइन पर लगातार 5वें दिन भी झड़पें जारी हैं। इस बीच अफगानिस्तान की सेना ने सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान की कई प्रमुख सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों के बाद अफगानी सेना ने पाकिस्तानी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्तक जिले में 3 और अलीशेर जिले में 2 पाकिस्तानी चौकियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक की। ये पहली बार था कि किसी राष्ट्रपति की पत्नी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक का विषय था संघर्ष के समय में बच्चों और शिक्षा की भूमिका। अमेरिका द्वारा जारी बैठक में विवरण में कहा गया है कि मेलोनिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को यह निर्णायक संदेश दिया कि शांति का अस्थिर होना आवश्यक नहीं है।
Does not need to be fragile.
शांति का अस्थिर होना जरूरी नहीं है। स्थायी शांति तभी मिलेगी जब सभी समाज में ज्ञान और समझ को पूरा महत्व दिया जाएगा। किसी राष्ट्र के नेताओं द्वारा शिक्षा को दिए जाने वाला महत्व उस राष्ट्र की विश्वास प्रणाली का आधार बनता है।
Shape the core of their country's belief system.
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। एक रिपोर्ट।
पृथ्वी पर सभी को एक समान रूप से जीवन यापन करने का अधिकार है, चाहे फिर वो मनुष्य हों या फिर पशु। विश्व भर में मानव कल्याण के लिए तो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े प्रयास कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना और विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। वन्य जीव हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा हैं। वे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरीखे जैव विविधता संपूर्ण देश में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर और भारतीय हाथी जैसे दुर्लभ वन्य प्राणी इसमें शामिल हैं। लेकिन इन दुर्लभ प्रजातियों के सामने आज कई खतरे हैं। इनमें वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार, प्रदूषण और शहरीकरण प्रमुख हैं। सरकार तो इन खतरों से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन हम निजी स्तर पर भी इनके लिए प्रयास कर सकते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हमें स्मरण कराता है कि वन्य जीवों की रक्षा ही प्रकृति की रक्षा है और प्रकृति की रक्षा ही मानव जीवन की सुरक्षा है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी विश्व वन्यजीव दिवस को पृथ्वी पर अद्भुत जैव विविधता का उत्सव बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज YouTube पर 3 करोड़ सब्सक्राइबर का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। वे इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2007 में YouTube से जुड़े थे। रैंकिंग के अनुसार वे इस श्रेणी में अन्य लोगों से काफी आगे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने डोला पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने कामना की कि भगवान कृष्ण के साथ मिलन का यह आनंदमय त्यौहार सभी के लिए सुख और सौभाग्य लेकर आए। पश्चिम बंगाल में आज रंगों का त्यौहार डोल यात्रा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही सभी उम्र के लोग, विशेषकर बच्चे, एक दूसरे पर अबीर लगा रहे हैं।
खेलो खेलो, रंग है कोई अपने संग है, भीगा भीगा अंग है।
होली के अवसर पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर कल दोपहर 2:30 बजे तक सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल नियम के अनुसार दोपहर 2:30 बजे के बाद से ये सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी। दुनिया के कई क्षेत्रों में आज पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में ये दुर्लभ खगोलीय घटना दोपहर 3:20 पर शुरू होगी और शाम 6:47 पर समाप्त होगी। भारत आज बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। सभी 5 स्पर्धाओं में भारत के 12 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का सामना मौजूदा चैंपियन चीन के शी यू ची से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ भारत विश्व के लिए आशा की किरण बना हुआ है। बजट उपरांत वेबिनार में श्री मोदी का उद्योग जगत से गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक निर्माण, उत्पादन और निर्यात करने का आग्रह। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए दो और अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया। पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हुआ। इसराइल ने तेहरान और बेरूत के सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमले किए। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एयर इंडिया की पहली उड़ान दुबई से नई दिल्ली पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।